আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کرنے دران پیشی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد چند تفسیری فوائد اور اس کے ساتھ ساتھ بارگاہ غوثیت میں ہدیہ عقیدت اور محبت وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. خالق کائنات اس آیت بینات میں ارشاد فرما رہا ہے قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما, اور جواب دیا کہ یہ تو ہم نہیں چاہتے تھے, چنانچہ وہ دونوں پلٹے اپنے نشان قدم پر. فوجد عبدا من عبادنا, تو پایا انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, جنہیں ہم نے رحمت اور سکھا دیا وہ علم اپنی طرف سے جو خاص تھا. یہ ان آیت بینات کا ترجمہ ہے. ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. اسلام کا ظاہر شریعت ہے اور باطن طریقت ہے. یا بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری احوال شریعت ہیں اور باطنی احوال طریقت ہیں. علم کی دو قسمیں ہیں, ایک علم ظاہر اور ایک علم باطن. ظاہری علوم انسان کوشش کر کے محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے, لیکن باطنی علوم جسے علم لدنی کہا گیا وہ محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کرم اور اس کی عطا سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دو علم ملے, ایک وہ جس کے لیے حکم دیا کہ اس کو لوگوں میں پھیلا دو یعنی لوگوں کو سکھاؤ, اور دوسرا وہ کہ اگر میں وہ لوگوں کو بتا دوں تو میرا یہ حلقوم کاٹ دیا جائے. علماء نے لکھا کہ اسی سے مراد علم باطن یا علم طریقت یا علم لدنی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک واقعے کا ذکر کیا جس کو سفر مجمع البحرین کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ بخاری میں اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ جب فرعون کے لوگ ہلاک ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جامع خطبہ دیا, اور وہ ایسا خطبہ تھا کہ جس کو سن کر لوگ اش اش کر اٹھے. اس میں بڑی حکمت ماں باتیں آپ نے بیان فرمائیں. जिसने भी सुना उसके दिल पर असर हुआ। तो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा, ए मूसा, क्या इस रुए जमीन पर आपसे बड़ा कोई आलिम नहीं? आपने फरमाया कि हां, इस रुए जमीन पर मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। और एक कौल के मुताबिक बाद उलमा ने यह लिखा कि यह बात आपने जबान से नहीं कही, दिल में यह ख्याल किया कि मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। जाहिर है नबी का इल्म सबसे ज्यादा है और नबी रुए जमीन पर सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला, सबसे बाला, तो उसका इल्म भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। जब आपने ये फरमाया या दिल में यह ख्याल किया कि मेरा इल्म इस रुए जमीन पर सबसे ज्यादा, तब खालिक कायनात ने फरमाया, मूसा, हमारा एक बंदा है जिसको हमने अपनी तरफ से खास इल्म अता किया, आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अपनी रहमत, और रहमत से मुराद नबुवत, और इल्मे लदुन्नी हमने उसे अता किया। मौला वो बंदा कहां मिलेगा? अब उसकी तफसील फिर मुफस्सिरीन ने बयान की और अहादीस में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। तफसील यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि उस बंदे से मिलो, और आपकी यह ख्वाहिश हुई कि मुझसे ज्यादा जो इल्म रखता है या जिसको अल्लाह ने एक खास इल्म अपनी तरफ से अता किया है उससे मिलना चाहिए और वो इल्म मुझे उससे हासिल करना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, एक मछली ले लो, उसे भून लो, और वो मछली लेकर फिर तुम सफर करो, जहां पर मजमाउल बहरैन यानी दो दरिया जहां पर मिले, और जिस मकाम पर वो मछली जिंदा होकर दरिया में कूद जाए, वहीं हमारा बंदा तुम्हें मिलेगा। ये निशानी बताई। चुनाचे एक मछली ले ली, उसे भून लिया, पका लिया, उसका पेट चाक करके तमाम चीजें निकाल दी, जिस तरह के हम खाने के लिए मछली तैयार करते हैं, जो गैर जरूरी चीजें निकाल दी, उसको भून लिया, पका लिया, और बाद रिवायतों में कि उसमें से कुछ खा भी लिया। अब गौर करें, मछली को भून दिया जाए, पका लिया जाए, उसमें से कुछ खा लिया जाए, और फिर वो जिंदा होकर चली जाए। अल्लाह की कुदरत है ना। अब ये चले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके एक साथी हजरत युशै बिन नून, आपने उनको साथ ले लिया और सफर करना शुरू कर दिया। मंजिल ब मंजिल सफर करते रहे, चलते रहे। एक मकाम पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम करने के लिए लेट गए। जिस मकाम पर आप लेटे तो हजरत युशै बिन नून ने देखा कि वो मछली जो पकी हुई थी, जिसको भून लिया गया था, जिसमें से थोड़ा सा खा भी लिया गया था, वो जिंदा हुई और कूद कर दरिया में चली, और उसने सुरंग की तरह अपना एक रास्ता उस दरिया में बना लिया। और अल्लाह ताला ने यही निशानी बताई थी कि जहां पर वो मुर्दा मछली जिंदा होकर दरिया में चली जाए, वहीं पर हमारा बंदा मिलेगा। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे, हजरत युशै बिन नून जाग रहे हैं और सारा मंजर देख रहे हैं। इन्होंने सोचा, अगर मैं बेदार करूंगा तो इनके आराम में खलल पड़ेगा, और निशानी यही थी कि जहां यह अलामत हो वहीं हमारा बंदा मिलेगा। चलो इनको बेदार होने दो, फिर मैं इनको बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए और फिर सफर पर रवाना हो गए। हजरत युशै बिन नून भूल गए कि मैं इनको बताऊं कि मछली जिंदा होकर दरिया में चली गई। अब दोनों ने सफर शुरू कर दिया, चलते रहे, चलते रहे, सफर करते रहे। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि रात में सफर हुआ यहां तक कि सुबह हो गई। जब थक हार कर एक मकाम पर बैठे और कुछ भूख महसूस हुई, तो मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया लाओ भाई हमारा नाश्ता लाओ, थोड़ा सा नाश्ता कर लें फिर सफर करेंगे। और नाश्ता क्या था? वही मछली थी जिसको भून कर साथ लेकर चले थे कि जहां पर भूख लगेगी हम खा लेंगे। अब हजरत युशै बिन नून को याद आया, अरे वो मछली तो चली गई। तब आपने बताया हजरत मूसा अलैहि सलाम को, जिस मकाम पर आप आराम करने के लिए लेटे थे, हम रुके थे, वहीं वो मछली जिंदा होकर दरिया में कूद गई। आपने फरमाया उसी मकाम की निशानदेही तो अल्लाह ताला ने फरमाई थी, जहां उसका बंदा है, जिस बंदे को अल्लाह ने खास इल्म अता किया है, और वो इल्म इल्म लदुन्नी था। हमें वहीं जाना है। बस दोनों फरतदाला आसारिहिमा अपने कदमों पर वापिस पलटे, हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत युशै बिन नून वापिस पलटे। फिर चलते 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 उस मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि समंदर के दरमियान जजीरा है और उस जजीरे में एक साहब चादर ओढ़े हुए सो रहे, सर की तरफ से चादर अंदर की हुई है, पैरों की तरफ से यानी पूरा जिस्म ढाप के आराम फरमा रहे। अल्लाह ने फरमाया फवजदा अब्दम मिन इबादिना, पस पा लिया उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को। और वो बंदे कौन थे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया उस बंदे को हमने खास इल्म अता किया, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने इल्म लदुन्नी उसको अता किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उन्होंने वहीं लेटे लेटे जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और फिर चादर हटाई चेहरे से, कहा इस जमीन पर ये सलामती भेजने वाले कहां से आए, कौन हैं आप? कहा मैं मूसा हूं। कौन से मूसा? कहा बनी इसराइल वाले। फिर वो उठकर बैठ गए और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको खिजर इसलिए कहा जाता है, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करते हैं और तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, कि उनको खिजर इसलिए कहा जाता है कि जहां पर वो नमाज पढ़ते थे उस मकाम पर सब्जा उग जाता। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, उनका नाम है बलिया बिन मलकान, ये उनका इसमें मुबारक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। तो जिस मकाम पर वो नमाज पढ़ते थे सब्जा उगता था, जमीन जमीन में जिंदगी आ जाती। तो जिस मकाम पर अंधेरा रोशनी से बदल जाए, जिस मकाम पर जहालत इल्म से बदल जाए, जिस मकाम पर मौत जिंदगी से बदल जाए, वही अल्लाह का बंदा। पता चला कि बंदे की उस कदमों की बरकत थी। अच्छा एक रिवायत और है, एक रिवायत यह थी बाज़ उलमा ने लिखा कि जिस मकाम पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे वहीं करीब ही आब हयात, यानी वो जिसको आदमी पी ले तो मौत ना आए, उसके चंद कतरे मछली पर पड़े उसमें जिंदगी पैदा हो, और वो जिंदा होकर समंदर में कूद गई और उसने एक सुरंग बना ली और उसी के अंदर गायब हो गए। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि उस समंदर में एक मछली पाई जाती है जो एक तरफ से खाई हुई होती है, यानी जिंदा होती है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफ से खाई हुई, उसकी सिर्फ खाल है अंदर गोश्त नहीं। कहते हैं हो सकता है कि यह उसी मछली की नस्ल से हो, और लोग तबर्रुक के तौर पर उसे लेते हैं, यह मुख्तलिफ तफासिर में यह मौजूद है। बाहर सूरत वहां इन दोनों की मुलाकात हो गई। अब बाद लोगों ने यह कहा कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी हैं, बाद ने कहा कि नहीं वली हैं, मुख्तलिफ अकवाल, लेकिन अक्सर उलमा ने कसरत आरा इसके हक में है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम नबी हैं वली नहीं। क्यों? इसलिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलील कदर पैगंबर हैं और वो गए इल्म हासिल करने के लिए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास। तो ये कैसे मुमकिन है कि नबी वली से इल्म हासिल करे? نبی کا مقام بلند ہے، تو نبی کا مقام ولی سے بلند، تو وہ بلند مقام پر ہو کر اپنے سے نچلے درجے والے سے علم حاصل کرے؟ نہیں۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنی طرف سے رحمت اور خاص علم یعنی علم لدنی اپنے اس بندے کو ہم نے عطا کیا، اور اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام۔ اچھا، اب علم لدنی ہے کیا؟ دیکھیے، ایک علم ہے جو محنت کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کوشش کریں، میڈیکل میں داخلہ لیں، محنت کریں، ڈاکٹر بن جائیں۔ آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، محنت کریں، کوشش کریں، انجینئر بن جائیں۔ آپ عالم دین بننا چاہتے ہیں، محنت کریں، کوشش کریں، عالم دین بن جائیں۔ یہ سب ظاہری علوم محنت کر کے، کسب کر کے، مجاہدہ کر کے، کوشش کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر علم لدنی کی تعریف یہی کی جو بغیر حاصل کیے اور بغیر پڑھے حاصل ہو جائے، وہی علم لدنی، وہی علم لدنی۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کو بھی عطا فرماتا، علم لدنی۔ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کیا آپ کسی کے پاس جائیں گے، جی مجھے علم لدنی مل جائے، یا کوئی کتاب ایسی ہو جس پہ لکھا ہو علم لدنی، آپ نے پڑھ لیا آپ کو وہ علم مل گیا؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ جیسے کسی نے کہا، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، عرفان کی میں ہونٹوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ ایک شراب ہے نا جو ہونٹوں سے پی جاتی ہے، یہ شراب محبت یہ نظروں سے پلائی جاتی، تو یہ وہی علم ہے جو سینہ بسینہ چلا رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ان کو خاص علم عطا فرمایا، خاص راز عطا فرمائی، جس کے جنازے میں وہ شریک نہ ہوتے، حضرت فاروق اعظم اس کے جنازے میں شریک نہ ہوتے، سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اور بہت سی چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتائی۔ تو جو راز ہے وہ اسی کو بتایا جاتا ہے جو راز رکھے، بات سمجھ رہے نا، جو راز کو راز رکھے اسی کو آپ بتائیں، اور جو راز کو فاش کر دے اس کو کیسے بتائیں؟ مثال کے طور پہ ایک بات اپنے دوست کو بتائی، کسی کو بتانا نہیں، اس نے آگے بتا دی۔ آج کل یہی سلسلہ، آگے بتایا، اس نے کہا کسی کو بتانا نہیں، اس نے تیسرے کو بتا دیا بتانا نہیں، پتہ چلا پورے شہر کو پتا ہے۔ پیٹ میں بات رکھنا بڑا مشکل ہے، فوراً کہتے ہیں ہم بتا دیں، کسی کو بتا دیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے کسی کو بتا دیں۔ ہمارا حال تو یہ، کوئی بات پتہ چل جائے فوراً بتا دیں۔ اور یہ بزرگان دین اولیاء کاملین، ان کے پاس دو قسم کے راز ہیں، ایک مخلوق کے راز، ایک خالق کے راز۔ مخلوق کے راز بھی ان کے سینے میں ہیں۔ اب اس کی مثال ایک چھوٹی سی یہ سمجھ لیں، ہم تو ان کی نالین کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ کسی نے آ کر بتایا اپنے حالات، پھر اس نے اپنے دوست کے متعلق بتا دیا، پھر دوست نے آ کے بتا دیا، پھر اس کے بہن نے بتا دیا، پھر بھائی نے بتا دیا، پھر رشتہ داروں نے بتا دیا۔ اگر یہ چیزیں ہم بیان کر دیں تو لڑ لڑ کے مر جائیں، ہے نا بات؟ ایک دوسرے کی باتیں اگر بتا دیں تو کیا ہوگا، اچھا یہ میرے متعلق یہ کیا کر گیا، اچھا یہ میرے متعلق یہ سوچتا ہے۔ اس لیے وہ راز ہے، اپنے سینے میں رکھا، بتایا نہیں۔ ہاں اگر بتایا تو اس کی تعریف میں بتایا، وہ تمہارا دوست تو تمہاری تعریف کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ بزرگان دین کا کام ملانا ہے، ختم کرنا نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی تحفے میں قینچی لے آیا، یہ قینچی تحفے میں دے رہا ہوں، فرمایا اس سے ہمارا سروکاری نہیں ہے، یہ تو کاٹنے والی ہے۔ پھر کیا لائیں، سوئی دے دی، کہا یہ لے جاؤ، یہ سینے والی، یہ ملانے والی ہے، جوڑنے والی ہے، قینچی کا کیا کام ہے، یہ تو کاٹنے والی ہے۔ تو بزرگان دین ملانے کے لیے آئے، غوث اعظم ملانے کے لیے آئے، غریب نواز مخدوم سمنانی ملانے کے لیے آئے، دلوں کو ملا دیا۔ اگر ایک کی بات دوسرے کو بتا دیتے تو لوگ ملتے نہیں، یہ مخلوق کے راز۔ اور خالق کے راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز بتائے. اچھا راز کیا ہے؟ زندگی اور موت راز ہیں. کب موت آئے گی پتہ ہے؟ میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ آخری ایام میں اپنے وصال کے یعنی بالکل قریب کے جو ایام تھے ویل چیئر پر یہاں تشریف فرما. ایک عورت بیٹے کو لے کر آئی اور رو کر کہا کہ حضور اس کے لیے دعا کریں گے, عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہے. ڈاکٹر نے جواب دے دیا, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک, کوئی تعویذ دے دیں, دعا کریں گے. تعویذ نہیں دیا. اور جب وہ چلا گیا کہا یہ صرف چند دن کا مہمان ہے, اس کو نہیں بتایا. اور وہی ہوا کہ چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. راز ہے نا, اگر بتا دیں تو مرنے سے پہلے ہی مر جائے, اور ماں کو بتا دو تو کیا حال ہو. یہ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کے ذروں کے صدقے میں ان کو بتا دیا, علم لدنی عطا کر دیا, لیکن راز بتایا نہیں. اسی طرح خالق کے سربستہ راز, موت کہاں آئے گی, کس وقت آئے گی, رزق کتنا ہے, ترقی ہے, تنزلی ہے, کون کیا کرے گا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بتا دیا. تو یہ سارے علم لدنی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں پڑھا رہے. آپ کی خانقاہ جو تھی نا, وہ خانقاہ بھی تھی, مدرسہ بھی تھا, وہ دارالعلوم بھی تھا, وہ یونیورسٹی بھی تھا. وہاں ظاہر کی اصلاح بھی کی جاتی تھی, باطن کی اصلاح بھی کی جاتی تھی. ظاہر کو بھی سنوارا جاتا تھا, دل کو بھی سنوارا جاتا تھا, تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب بھی کرایا جاتا تھا. چلہ کشی بھی ہو رہی ہے, تفسیر بھی پڑھائی جا رہی ہے, حدیث بھی, فقہ بھی, منطق بھی, فلسفہ بھی, ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں, اور رات میں اللہ ہو کے ذریعے دل کو صاف کیا جا رہا. تشریف فرما ہے, کتاب پڑھا رہے ہیں, طلبہ بیٹھے ہیں, فرمایا چلو جلدی اٹھو, اٹھو جلدی, عمارت سے باہر نکل چلو. سب نے کہا پتہ نہیں کیا ہو. آپ نے فرمایا جلدی کرو. جیسے ہی سب باہر نکلے چھت گر گئی, اسی وقت چھت گر گئی. اگر سب کے سب ہوتے تو کیا ہوتا, سارے شہید ہو جاتے. پہلے سے علم ہو گیا, غوث نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ ان کو وہ علم عطا کرتا ہے کہ اس علم کے ذریعے اپنے محبین کو, اپنے مریدین کو, اپنے معتقدین کو, اور جو بھی ان سے تعلق رکھنے والے ہیں, آنے والے حادثات, آنے والی بلاؤں سے محفوظ کر لیتے. تو یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ان کو عطا ہو. تو قرآن نے کہا فوجدا عبدا من عبادنا, انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا. تو وہ بندے کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. اچھا, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, خاص علم, علم لدنی, میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. نہیں نہیں, میں رہنا چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ رہوں, کچھ حاصل کروں. اچھا, ایک شرط ہے, تمہیں بولنا نہیں ہے. میں جو کچھ کروں گا تمہیں نہیں بولنا ہے. ہاں ٹھیک ہے میں خاموش رہوں, میں آپ کے ساتھ. کہا چلو, اب سفر پر چلے, کشتی میں بیٹھے, کشتی بڑی شاندار, بالکل نئی. حضرت خضر علیہ السلام نے انگلی ماری, سوراخ کر دیا. اور ایک روایت میں آیا کہ تختہ اس کا ایک اکھاڑ کے پھینک دیا, یعنی اچھی خاصی کشتی اس کو عیبدار بنا دی. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا تھا نا بولنا نہیں. انک لن تستطیع معی صبرا, تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہا نہیں نہیں, اچھا اب نہیں بولوں. ٹھیک ہے, چلے آگے. دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں, انہوں نے ایک بچے کو پکڑا, اس کو پٹخا, مر گیا. ارے آپ نے یہ کیا کیا, ایک معصوم جان کو مار دیا. میں نے کہا تھا نا بولنا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب میں خاموش رہوں. اور آگے گئے, گاؤں میں پہنچے, گاؤں والوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی. جب واپس آنے لگے, ایک دیوار گر رہی تھی, حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لگا کے اس کو درست کر دیا. گرنے والی تھی نا, سیدھا کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, انہوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. ना कोई मेहमान नवाजी, ना कोई खाने को पूछा, ना पानी को, किसी चीज को। अरे ये दीवार सीधा करने की उजरत ले लेते। इन नकलन तस्तती मैं ये सब्र, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, बस तुम्हारा रास्ता अलग मेरा अलग। कहा नहीं नहीं अब नहीं बोलूंगा, कहा नहीं बस हो गया, अब तुम अलग जाओ। मैं अच्छा चलो ठीक है अलग जा रहा हूं, बता तो दें ये किया क्यों था, ये सारी बातें तुम बता तो दें क्यों किया। कहा सुनो वो कश्ती जो थी, जो बिल्कुल सही थी, सही सलामत, उसको जो ऐबदार बनाया, सुराख किया, या वो एक तख्ता उखाड़ के फेंका, इस वजह से कि दूसरे साहिल पर एक जालिम बादशाह रहता था और उसने अपने कारिंदे छोड़े थे कि जो अच्छी कश्ती हो उसे पकड़ लो और जो ऐबदार हो उसे छोड़ दो। ये गरीब लोगों की कश्ती थी, यह वहां जाती बादशाह पकड़ लेता। उसके जो कारिंदे थे वो देखते बिल्कुल सही सलामत है, नई है, मैंने इसलिए ऐबदार बना दिया, जब वो पकड़ेंगे देखेंगे इसमें ऐब है वो छोड़ देंगे, इसकी रोजी लगी रहे। हिकमत ये थी। अच्छा और वो बच्चे को क्यों कत्ल किया, अच्छा खासा खेल रहा था, उठा के पटक दिया वो मर गया। कहा ये भी सब काम अल्लाह के हुक्म से था, इसलिए कि वो बड़ा होकर काफिर बनना था, उसको वालदैन उससे मोहब्बत करते थे, उस मोहब्बत की वजह से मुमकिन था कि वो भी कुफर की तरफ पलट जाते, इसको यहीं ख़त्म कर दिया, लिहाजा अब वो वालदैन ईमान पर कायम रहे। अच्छा और वो दीवार क्यों सीधी कर दी, उन्होंने तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, गांव वालों ने। कहा सुनो उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना दफन था और वो अभी कम सिन, दीवार गिर जाती खजाना जाहिर हो जाता, लोग लूट के ले जाते। अल्लाह के हुक्म से मैंने ये काम किया कि दीवार को सीधा कर दिया, अब खजाना महफूज रहेगा, जब ये बड़े होंगे जवान होंगे अल्लाह का हुक्म होगा, दीवार गिरेगी या जो भी सूरत होगी खजाना जाहिर होगा, इनको मिल जाएगा। और ये मैंने क्यों किया, वकान अबू हुमा सौलेहा, इन दोनों का बाप नेक था, उस बाप की नेकी चली आ रही थी। यहीं से पता चला कि औलाद नेक हो तो बाप को सिला मिलता है और बाप नेक हो तो औलाद को सिला मिलता है। और वो हकीकी बाप नहीं, उसकी नस्ल में कोई आगे जाकर कोई नेक गुजरा था, उसकी नेकी नीचे तक चली आ रही थी। तो जिसका हकीकी बाप नेक हो उसको सिरा ना मिले तो किसको मिले। इसीलिए कहते नेकी कभी जाया नहीं होती, औलाद इस दुनिया में नेकी करेगी, बाप कब्र में पहुंच चुका है, सवाब उसको मिल रहा, क्यों, उसकी तरबियत से औलाद ने नेकी की। आप अपने बच्चों को आज नमाजी बना दें, कल आप कब्र में होंगे, बच्चा यहां नमाज पढ़ेगा, औलाद दुनिया में नमाज पढ़ेगी, कब्र में रहमत की हवाएं चलेंगी, रहमत की बरसात होगी। और बाप की नेकी औलाद को उसका सिला मिले। वकाना अबू हुमा साले, उनका बाप नेक था। तो ये काम जो किए हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से किए। अल्लाह फरमाता है आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने उसको रहमत अता की और अपनी तरफ से खास इल्म, जिसको इल्म लदुन्नी कहा गया, अल्लाह फरमाता है वो हमने उसको अता कर दिया। तो ये इल्म ऐसे नहीं अता होता, ये अल्लाह ताला का राज है। और इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के राज कसीदे गौसिया उठाकर देखो, फरमाया गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जीलानी हसनी अल हुसैनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वलो अल्कैत सिर्री फी बिहारिन लसारा कुल्लु गौरन फी जवाली, अगर मैं अपना राज अपनी तवज्जो दरियाओं पर डालूं तो वह खुश हो जाए। वलो अल्कैत सिर्री फौका नारिन लखमिदत वंतफत मिन सिर्रे हाली, अगर मैं अपना राज आग पर डालूं तो बुझ जाए। वलो अल्कैत सिर्री फौकल जिबाल, अगर मैं अपना राज तवज्जो पहाड़ों पर डालूं, लदुक्कत वक्तफत बैनर रिमाली, तो रेजा रेजा होकर उड़ जाए। वलो अल्कैत सिर्री फौका मैतिन, अगर मैं अपना राज मुर्दे पर डालूं, लकामा ले कुदरती मौला ताली, खुदा की कुदरत से जिंदा होकर उड़ जाए। ये गौसे आजम की शान है। तो गौस की तवज्जो का यह हाल है, गौसे आजम की तवज्जो का यह हाल है, तो रसूल आजम की तवज्जो का क्या हाल है। गुलाम का यह हाल है तो इमाम की क्या शान होगी, वलीउल्लाह का मकाम है तो रसूलुल्लाह का मकाम क्या होगा। तो ये राज उसे ही बताए जाते हैं जो राज रखे। और ये कसीदा गौसे आजम ने बड़ी अपनी कैफियत में कहा, अजीब कैफियत आप पर तारी हुई उस वक्त, ये अल्फाज आपकी जबान मुबारक से निकले, बहुत से आपके कसाइद हैं लेकिन इस कसीदे की बात ही अलग। तो बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन उसे बताते हैं जो राज रखे। हजरत सुल्तान मशाइख महबूब इलाही सुल्तान निजामुद्दीन औलिया तशरीफ फरमा है, आ गए एक साहब खिलाफत के उम्मीदवार, खिलाफत मिल जाए। फरमाया अच्छा कल आना फिर बताएंगे। ठीक है, जब दूसरे दिन वो आए तो उनके आने से पहले अपने खादिम से कहा दो चूहे पकड़कर एक हांडी में बंद कर दो, ऊपर से ढांक दो, कपड़े में लपेट दो, यहां रख देना। रख दी। आ गए वो, कहा भाई ये हमारी एक अमानत है, ये फला बुजुर्ग इलाके में रहते हैं उन तक पहुंचा देना। अच्छा, लेकिन खोल के नहीं देखना है, अगर खोल के देख लिया तो मामला खराब हो जाएगा, खोल के नहीं देखना है। कहा हुजूर जैसा आप कहें। उन्होंने आंटी कंधे पे रखी, चले, जो चूहे थे फुदकना शुरू कर दिया, चूहा तो आराम से बैठता ही नहीं। अब जब वो फुदक रहे तो वो सोच रहे ये हांडी में ये सालन अगर है खाना है तो ये क्या हो रहा, ये उछल क्यों रहा। अब बेचैनी शुरू हो गई, खोल के देखूं ना देखूं, देखूं ना देखूं। हजरत ने कहा खोल के नहीं देखना, यही तो इम्तिहान था। लेकिन अब सब्र नहीं हुआ, कहा हजरत कहाँ देख रहे हैं, कोने में छुप कर खोल लो। एक कोने में बैठे, कपड़ा खोला, जैसे ही ढकना हटाया चूहा निकल के भागे। अरे ये क्या हुआ, दोबारा उसको बंद कर दिया। ये तो बड़ा मतलब, लेकिन ये चूहे क्यों भेजे, दो चूहे हजरत ने दूसरे बुजुर्ग के पास क्यों भेजे, समझ में आया नहीं। अब क्या करें, चूहे तो निकल के भाग गए। उन्होंने कहा हमारी अमानत है, जाया ना हो, खोल के मत देखना। फिर सोचा रहे उनको क्या पता जिनको भेजा है, ये खाली बर्तन ले आके दे दूंगा, अपनी तरह समझते हैं ना, जैसे हम नहीं जानते तो ये भी नहीं जानते, अपनी तरह मत समझो। पूछा नमाज पढ़ते, हाँ जी हाँ पढ़िए बिल्कुल, हिजुल बैर पढ़ी जी, पाबंदी से पढ़ रहा हूँ। जब देखा तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। क्या पीर साहब को क्या पता, ये नहीं पता एक नज़र में तुम्हारा एक्सरे कर लें पूरा कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। खैर वो चले गए, तो जिन बुजुर्ग के पास भेजा था वो अपने मुरीदीन में बैठे। अब ये वही हांडी लेकर जो कपड़े में बंधी हुई रख के पहुंचे, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे उन्होंने दूर से देखा, कहा मियां अमानत तो रास्ते में छोड़ाए, ये खाली हांडी का मैं क्या करूंगा, अमानत तो वहीं छोड़ाए। अब अरे इनको तो पता चल गया, ये तो बड़ी अजीब बात। लेकिन फिर वही गफलत, कहा चलो इनको पता है उनको क्या पता जिन्होंने भेजा, उनसे कह दूंगा हाँ मैंने पहुंचा दी। उन्होंने कहा ले जाओ वापिस, अमानत तुमने रास्ते में छोड़ दी। फिर वापस चले 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 सफर करते करते, अब फिर अपने हजरत के पास जब वहां पहुंचे, उन्होंने कहा मियां दो चूहे नहीं संभाल सके तो खिलाफत क्या संभालो। बुजुर्गान दीन आजमाते हैं, देखते हैं। हम समझते नहीं ये तो हमारी तरह है, इधर झूठ बोला उधर झूठ बोला। इसलिए वालिद गिरामी मेरे अक्सर फरमाया करते थे, हजरत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह, सांप जब चलता है ना टेढ़ा चलता है, लेकिन अपने बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा जाता है। तो कहीं भी टेढ़े मेढ़े रहो, खानकाह में आओ तो सीधे होकर आना, सही बात है ना। बाहर घूमते रहो टेढ़े मेढ़े, कुछ भी हो जाओ यहाँ बिल्कुल सीधे आना। लेकिन अफसोस ये कि नहीं जी बस ये तो ठीक है। और एक और बात उसकी मैं वजाहत कर दूँ, ये आजकल चल रहा है कि जिसको हवा पर उड़ता देखा, अरे ये तो साई पे कमाल है, हमारे पीर तो कुछ भी नहीं, उनके पीछे लग गए। उनको पानी पे चलता हुआ देखा, हाँ ये ज़्यादा है, इनके पीछे लग गए, चले चले जा रहे। अच्छा कुछ लोगों ने कहा जी फलां पीर भाई फलां साहब के पास चले गए, उनसे दुआ कराई, जब उनको रोका कि भाई हजरत तो मौजूद हैं, हाँ नहीं हजरत तो मौजूद है, उनका मकाम अलग है, इनसे भी ज़रा हासिल कर लो। यकदर गिर मोहकम गिर, एक दर को पकड़ लो और बस उसी के होके रह जाओ, जो कुछ मिलेगा वहीं से मिलेगा। एक साहब ने पीर साहब से कहा कि मुझे पैसे नहीं है, परेशानी है, दुआ कर दें। कहा एक पर्चा लेकर आओ, पर्चा लेकर आओ, एक लिखा एक पुड़िया बांध के दे दी जाओ, तकिए के नीचे रख देना, एक अशरफी रोजाना मिलेगी। ठीक है, सुबह उठे, तकिया हटाया, एक अशरफी मिल गई, बड़े खुश, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे दिन देखा, फिर एक अशरफी मिल गई। कुछ दिन गुजरे, एक और पीर साहब आए, उनका शोरा हुआ, अरे ये बड़े मुत्तकी, ये बड़े परहेजगार, ये उनके पास पहुंच गए। उनसे जाके कहा, हुजूर परेशानी है, पैसा नहीं है, किसके मुरीद हो? कहाँ, फला के मुरीद हूँ। तो कहा, नहीं अपने पीर से? हाँ, कहाँ था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्ची पे एक लिखा और मोड़ के दे दिया। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, एक अशरफी रोज मिलेगी। कहाँ मिली? हाँ मिली। फिर कहा, नहीं इससे गुजारा नहीं हो रहा। इंसान की हविस है ना, बढ़ती है। सरकार ने फरमाया, इंसान के पास एक सोने की वादी हो, पूरी वादी सोने की एक हो, तो ये कहेगा दो हो जाए, हलमी मजीद, हलमी मजीद, बढ़ता ही चले जाए। फिर फरमाया, इब्ने आदम का पेट मट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती, मरेगा तो ख्वाहिशात खत्म होंगी, वरना बढ़ती नहीं। तो दो पीर साहब थे, उन्होंने कहा, वो पर्चा है तुम्हारे पास? हाँ है, ले आओ। ले आए, उन्होंने उसके आगे जीरो लगा दिया। कितने हो गए? दस। कहा, अब दस मिलेंगी। अब खुश हुए कि वाह वाह, ये पीर तो, हमारे पीर तो ऐसे ही है, उन्होंने तो एक ही लगाया, ये देखो इन्होंने दस दस कर दी, अब दस मिल रही है। सुबह उठे, दस मिल रही है शर्फ। वाह वाह, ये साहिब कमाल है, पैसे के दौर है, जहां पैसा मिलेगा वही साहिब कमाल। खैर बहरहाल, फिर घूमते रहे तो फिर कोई और नजर आ गया। उन्होंने कहा, ये उनसे बड़े हैं। उनके पास गए, वही बयान किया। उन्होंने कहा, पीर साहब से कहा नहीं, कहा था उन्होंने एक लगाया, एक अशरफी मिली, फिर एक और मिले, उन्होंने उसी पर्चे पे जीरो लगा दिया, अब दस मिल रही है। उन्होंने कहा, अच्छा पर्चा है, कहाँ है? कर ले आओ। वो ले आए, उन्होंने एक जीरो और लगा दी। कितने हो गए? सौ हो गए। ये तो सबसे बड़े साहिब कमाल, मेरे पीर ने तो एक ही लगाया था, इन्होंने तो सौ कर दी, उसने दस की, इन्होंने सौ, ये सबसे बड़े। अब घूमते रहे, लेकिन फिर वही हवस और ज्यादा हो, लेकिन अब तीसरा कोई मिला नहीं, कोई और पीर नहीं मिला। फिर घूमते फिर वहीं पहुंचे अपने पीर के पास। उन्होंने कहा, भाई कहाँ थे इतने दिन से? हुजूर आपने तो कुछ किया ही नहीं, लोग आते हैं ना, इतने दिन से आ रहे हैं, कुछ किया ही नहीं, अपनी हरकत नहीं पता, आपने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो कुछ भी करें, पीर साहब दुआ करते रहे बस। खैर बहरहाल, आप लोग तो खैर बहुत अच्छे नेक लोग हैं, आपको नहीं कह रहे मैं, आम लोग जो हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, अच्छा हमने कुछ नहीं किया? नहीं। फिर किसने किया? कहा एक पीर मिले थे, उन्होंने जीरो लगाया, दस अशरफिया मुझे मिली। फिर कहा एक और मिले, उन्होंने जीरो लगाया, फिर सौ मिली, सौ अशरफिया मुझे मिल रही हैं, लेकिन पूरा नहीं हो रहा, मैं फिर आपके पास आया, आपने तो कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। कहा नहीं। कहा अच्छा जो हमने एक लगाया था वो वापिस कर दो, जो एक हमने लगाया था वापिस कर दो, अब एक हटा दो तो क्या होगा? डबल जीरो। अब ख्याल आया, ओहो असल तो यही था जिसने एक लगाया, असल तो वही था, अगर एक हटा दो तो डबल जीरो हो जाओगे, समझ लो, जब बैत कर लो तो पूरी इस्तेकामत के साथ कायम हो जाओ, कहीं भी घूमोगे पहुंचना वहीं पर है, और उसी का कर्म चलेगा, उसी का नाम चलेगा, उसी का फैज चलेगा जिसने एक लगाया, वरना एक को वापस कर दो डबल जीरो हो जाओगे। कहने का मकसद यह है कि यह राह तरीकत में, इसमें इस्तेकामत चाहिए, इसमें सब्र चाहिए, इसमें बेसब्री नहीं है। जरा सा परेशान हो, बेसब्री हो गई, कुछ नहीं हुआ, सबसे पहले अपने आमाल का जायजा लो, हम क्या कर रहे हैं? हम नमाजें पूरी पढ़ रहे हैं, हम वज़ाइफ़ पूरे पढ़ रहे हैं, हिज्जुल बहर हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह समद पढ़ रहे हैं, दलाइलुल खैरात पढ़ रहे हैं, अपने मामूलात देखो, अगर सही हैं तब जाकर कहो, हम तो पड़े पे सो रहे हैं, बाकी पीर साहब दुआ करते रहेंगे, हो जाएगा काम। तो इसमें सब्र और इस्तेकामत, ये पहली चीज। गौसे आजम फरमाते हैं, मुझ पर इतनी मुसीबतें पड़ी, इतने मसाइब, इतने आलाम आए कि अगर पहाड़ पर वो मुसीबतें पड़ती तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन वो सब मैंने बर्दाश्त किए। भूख प्यास, भूखे होते पत्ते खाकर गुजारा करते, प्यासे होते चश्मे का पानी पी लेते, फिर अल्लाह ने गौसे आजम के मकाम पर पहुंचा था, सबर किया, इस्तेकामत, और फिर इल्म हासिल किया। फरमाते, दरस्तु इल्मन सिरतु कुतबन, मैं इल्म हासिल करते करते कुतुब बन गया। तो बगैर इल्म के गुजारा नहीं है, और जब इंसान जाहिरी इल्म हासिल कर लेता है और किसी शय की नजर हो जाए तो इल्म लदुन्नी भी उसे अता हो जाता है। लेकिन राज राज है, राज उसे ही मिलेगा जो राज रखे, और जो इधर की उधर कर दे, उधर की इधर कर दे, वो फिर राज। तुझे क्या मिला, क्यों मिला, किसने बख्शा, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। हमारी अता की हुई बेखुदी से अगर होश आया तो अच्छा ना हो। कहीं भी रहे, किसी हाल में रहे, हमें घर भुलाया तो अच्छा ना हो। कभी भूल कर गैर के नक्शे पा को जिबी से लगाया तो अच्छा ना हो। हम ही हम हैं बातिन में, लेकिन बजाहिर किसी को दिल में समाया तो अच्छा ना हो। ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, किसी को बताया तो अच्छा ना हो। तो ये राज है, इस राज को राज रखो। तो जब राज रखोगे और बता दिया जाएगा, और अगर नहीं रखोगे तो फिर आगे नहीं बताया जाएगा। आतैनाहु रहमतम मिनिंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। इस वाक्य से ये पता चला कि इल्म की तलब होनी चाहिए। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर, अल्लाह ने कितना इल्म उन्हें अता किया होगा, लेकिन जब पता चला कि एक बंदा ऐसा है जिसको अल्लाह ने खास इल्म अता किया है, फौरन सफर पर निकल गए मुझे उससे इल्म हासिल करना, और कहा मुझे सिखाइए। अल्लाह के नबी होकर, जलीलुल कदर पैगंबर होकर इल्म की तलाश में जा रहे, और अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है। फौक कुल ज़ी इल्मिन अलीम। अपने आप को कभी मत ये समझो कि मैं अकल कुल हूं, मैं सबसे बड़ा आलिम हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। ये कहना चाहिए कि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, बस ये है सारी चीजें सी। और आखिरी बात, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू। यही इल्म है, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया, और जो सब कुछ पढ़कर भी अपनी हकीकत को ना पहचान सका उसका इल्म बेफायदा, वो क्या कर रहा। तो हम इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको दोनों उलूम अता फरमाए हैं, इल्म जाहिर भी, इल्म बातिन भी, इल्म कस्बी भी, इल्म वहबी भी। जाहिर और बातिन के दोनों उलूम के ये जामे हैं, और गौसे आजम की बारगाह वो थी कि जो भी आपकी बारगाह में आता था इल्म दीन हासिल करता था, आलिम बाअमल भी होता था, और आमिले शरीयत और तरीकत भी होता। अल्लाह ने वो मकाम और वो मर्तबा गौसे आजम को अता फरमाया। आपके मलफूजात यानी जब आप खिताब फरमाते थे, 400 उलमा कलम और तख्तियां लेकर उन्हें लिखने के लिए बैठते थे, 400 उलमा। कुछ फुकहा आपकी बारगाह में आए, गौसे आजम की बड़ी शोहरत है, शेख अब्दुल कादर जिलानी को लोग बड़े मान रहे हैं, इनके इल्म है, तकवा है, परहेजगारी है, इल्म लदुन्नी, इल्म बातनी, सब कुछ है। आओ जरा चल के इम्तिहान लें। आकर आपके पास बैठे, सब सामने की तरफ बैठ गए, और अपने जहन में सवालात लेकर आए, ये सवाल करेंगे इसका जवाब नहीं दे सकेंगे, ये सवाल करेंगे इसका जवाब नहीं दे सकेंगे, और जब जवाब ना दे सके हम कहेंगे ये इल्म है इनका, ये इनकी शोहरत कि जो इनके पास जाता है आलिम बन जाता है। हमारे सवाल का जवाब तो दे ना सके, लेकिन ये नहीं समझे थे कि किसके पास जा रहे हैं। गौस की बारगाह में पहुंचे और दायरे की सूरत में आपके सामने बैठ गए, आपने एक नजर सब उन फुकहा पर, उलमा पर डाली, और अपनी गर्दन को झुका लिया, अपने कल्ब की तरफ, दिल की तरफ तवज्जो की, आपके सीने से नूर की शुआएं निकली, उन सबके सीनों तक गई और वापिस आ गई। रोशनी आपके कल्ब से निकली, उनके सीनों पर पड़ी और वापस आ गई, जितना इल्म था सब सल्ब कर लिया। खाली बैठे, खाली बैठे, सब ने अपनी पगड़ियां उतार के फेंक दी, अपने सर गौस के कदमों में रख दिए। फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो, कुछ जहन में है ही नहीं तो पूछे क्या, सीना साफ हो गया, इल्म गायब हो गया। कहा बस यही इल्म था तुम्हारा, यही तुम्हारा इल्म है। गौस का इल्म नबी पाक अलैहि सलातो वसलाम की नालैन के सदक़े में अता करदा इल्म था। हर वली को इल्म अता होता है, लेकिन ये लोग अपने आप को जाहिर नहीं करते, कभी नहीं कहते हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। तो जो ये कहे कि मैं जानता हूँ, समझ लो कुछ नहीं जानता, और जो कहे मैं कुछ नहीं जानता, वही सब कुछ जानता। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। आज हम गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जीलानी حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور ان کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جو علم لدنی آپ کو عطا ہوا اس کے چند قطرے ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا کرم فرمایا اور ولیوں کا سردار بنا دیا، جب تک آپ کی مہر نہ لگے ولی ولی نہیں بن سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا، آج ہم ان کو جانتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں یہ غوث اعظم کون ہے، یہ غریب نواز کون ہے، کون ہے یہ، ہم تو جانتے نہیں، تو ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عالم ارواح میں یہ روحیں لشکروں کی صورت میں تھیں، جس نے وہاں پہچان لیا وہ یہاں بھی پہچان لے گا، اور جس نے عالم ارواح میں نہیں پہچانا وہ دنیا میں بھی نہیں پہچانے۔ تو آپ غوث اعظم کو جانتے ہیں یا نہیں، غریب نواز کو جانتے ہیں، داتا گنجبش کو جانتے ہیں، مخدوم سمنانی کو جانتے ہیں، ہم سارے بزرگوں کو جانتے ہیں، اس لیے عالم ارواح میں ہماری روحوں نے ان کو پہچان لیا تھا، الحمدللہ یہاں بھی پہچان رہے ہیں، اور اس عالم سے جب اس عالم میں جائیں گے وہاں بھی پہچان لیں، سب غوث کے جھنڈے تلے ہوں گے، سب مخدوم سمنانی کے جھنڈے تلے ہوں گے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث اعظم کے فیضان سے مستفید فرمائے، مخدوم سمنانی کے فیضان سے مستفید فرمائے، حضرت قطب ربانی حضرت اشرف المشائخ کے فیضان سے مستفید فرمائے، استقامت عطا فرمائے کہ ہم ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہیں، نہ ادھر رہیں نہ ادھر رہیں بلکہ صرف ادھر ہی، ایک در کو تھام لو اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔